आर्यन की आंखें अचानक ठंडी और धारदार हो गईं। उसके होठों पर कड़वी तिरछी मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो दर्द से पैदा होती है लेकिन दुनिया उसे गुस्सा समझ लेती है। तो यही जानना था, उसने बेहद धीमे लेकिन बहुत कठोर स्वर में कहा, इतना बड़ा राज सिर्फ इसी के लिए खोलना था। श्यामली एक पल के लिए चुप हो गई, उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, आंखों में जमी नमी गिरने को तैयार। आर्यन ने उसकी ओर सीधा देखते हुए कहा, तुम अपने पति परमेश्वर से ही क्यों नहीं पूछती हो? कमरा एक पल में जम गया। श्यामली की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ चीर कर रख दिया हो। आर्यन, उसकी आवाज कांपी, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकता? आर्यन की आवाज अब तेज और चुभने वाली थी। जिस इंसान पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए, जिससे तुम्हें जवाब मांगना चाहिए, तुम उसी को छोड़कर मेरे पीछे घूम रही हो, क्यों? श्यामली के होंठ सूख गए, उसने धीरे से कहा, तुम जानते हो वो मुझे कभी सच्चाई नहीं बताएंगे। और मैं बताऊं? आर्यन हंसा, एक खाली टूटती हुई हंसी। क्यों, किस हक से? क्या नाम है हमारे रिश्ते का श्यामली, बताओ क्या नाम है? श्यामली की आंखें भर आईं, उसने होंठ भींचे लेकिन जवाब नहीं दे पाई। उसकी खामोशी ने आर्यन को और भड़का दिया। बस, वो पीछे हट गया, उसकी नजरें तलवार बन गई। अगर हमारे बीच कुछ भी नहीं तो उस बंद कमरे के सवाल का जवाब मैं क्यों दूं तुम्हें? श्यामली का गला सूख गया, उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूं। आर्यन के कदम रुके, उसकी आंखों में एक पल को चुपता दर्द चमका, लेकिन उसने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। मत करो, उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत भारी थी, मैं भरोसा बनने लायक आदमी नहीं हूं श्यामली। श्यामली ने कांपते स्वर में कहा, मत कहो ऐसा। पर आर्यन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, उसका जबड़ा कसा हुआ था, सांसें भारी, आंखें लाल। जाओ श्यामली, उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा, और अगली बार सवाल पूछना हो तो अपने पति परमेश्वर से पूछना, मुझसे नहीं। श्यामली जैसे अंदर से गिर गई, उसने फर्श पर बिखरे कपड़े उठाए, उंगलियां कांप रही थीं, आंसू रोकने के लिए होंठ खींचे हुए। कमरे से जाते वक्त उसके कदम धीमे थे, बहुत भारी, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही हो। दरवाजा हल्की आवाज के साथ बंद हुआ और जैसे ही वो बाहर गई, आर्यन फट पड़ा। उसने पास पड़ी किताबें पूरे जोर से जमीन पर फेंक दी, फर्श पर किताबें बिखर कर धड़ाम धड़ाम गिरी। आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, क्यों श्यामली? उसने दहाड़ते हुए कहा, क्यों हर बार तुम ही मुझे समझने से मना कर देती हो? उसने फिर किताब उठाकर दीवार पर दे मारी, कवर फटकर उड़ गया। तुम मेरी हो, समझी? उसकी आवाज टूट रही थी, कांप रही थी। तुम जितना चाहो भागो, जितनी कोशिश करो, हम साथ थे, हैं और रहेंगे। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें लाल, और अंदर कोई आग दहक रही थी जिसे वो खुद भी बुझा नहीं पा रहा था। वो दीवार के सहारे बैठ गया, हाथों से अपना चेहरा पकड़कर, जैसे हर चीज अंदर से टूट रही हो। श्यामली अपने कमरे में लड़खड़ाते हुए पहुंची, दरवाजा बंद होते ही उसकी टांगों ने जैसे साथ छोड़ दिया, वो सीधे बेड के किनारे बैठ गई, सांसें बेतरतीब, आंखें जलती हुई। कमरे में हल्की धूप पर्दे से छन कर आ रही थी, लेकिन अंदर जैसे कोई सर्द अंधेरा फैल चुका था। उसने बिना देखे बेड की सिलवटें ठीक करना शुरू किया, चादर को बार बार खींचना, हाथों को फंसाना, जैसे किसी छोटी सी चीज को ठीक करके अपने भीतर टूटे हुए हिस्सों को भी जोड़ देगी। आंसू आंखों तक आते, लेकिन वो हर बार उन्हें जोर से रोकती, जैसे खुद से ही जंग लड़ रही हो। क्यों, ऐसा क्यों होता है हर बार? वो बेहद धीमे स्वर में बुदबुदाई। उसे पता भी नहीं चला कि दरवाजा धीरे से खुला और कमरे के अंदर कोई और आ चुका था। भारी सख्त कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर धड़ धड़ गूंजती चली आ रही थी। विश्वनाथ, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ की उंगलियां उसके कोट की जेब में धंसी हुई, चेहरा हमेशा की तरह पत्थर, भावहीन सख्त, आंखों में तेज ठंडा अहंकार। फोन पर नजर गड़ी थी, वो मैसेज पढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक ऐसा रौब था जैसे पूरा कमरा उसी का हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, बिना एक शब्द बोले, बिना आवाज किए, जैसे हवा भी उसकी मौजूदगी से डर रही हो। फिर उसकी नजर अचानक श्यामली पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। श्यामली अभी भी चादर ठीक करने में उलझी थी, आंखों में नमी चमक रही थी, बाल बिखरे, सांसें अस्थिर, और वो इतनी डूबी हुई थी कि उसे कमरे में किसी दूसरे इंसान के आने का एहसास तक नहीं हुआ। विश्वनाथ की आंखों में एक पल को अजीब सी चमक आई, कड़क कठोर आदमी की आंखों में कुछ नरम और अनकहा सा। मन में एक धीमी आवाज उठी, ये हर बार मेरे सामने इसी हाल में क्यों आती है?
उसकी निगाहें श्यामली के चेहरे पर टिक गईं, गालों की कमकपी, आंखों की लाली और वो दर्द जिसे चाहकर भी छिपाया नहीं जा सकता। वो एक कदम और बढ़ा, चुप्पी इतनी गहरी थी कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और उसी पल श्यामली अचानक उठी और सामने सिर्फ एक इंच की दूरी पर विश्वनाथ खड़ा था। दोनों की नजरें सीधी टकराईं, एक पल जो रुक गया जैसे समय जम गया हो। विश्वनाथ की आंखों में ठंडापन था, लेकिन उसी ठंड में कहीं एक गर्म अंधेरा छुपा था, एक ऐसा खिंचाव जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता। श्यामली की नजरों में गुस्सा, नफरत, हैरानी और गहरी सी दहशत चमक उठी। उसके होंठ कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज फंस गई। विश्वनाथ धीरे से आंखें सिकोड़े उसे एक पल पूरा देखने लगा, जैसे हर सोच पढ़ लेना चाहता हो। मन में फिर एक और सवाल उठा, आखिर ये लड़की मेरे सामने बार बार क्यों आ जाते हैं? श्यामली ने दबी कांपती हुई आवाज में कहा। आप? विश्वनाथ ने बिना झपके उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमे, बहुत सख्त अंदाज में कहा, ये मेरा घर है, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। श्यामली एक कदम पीछे हट गई, डर और शक उसकी आंखों में साफ था। वो सोच रही थी, ये कैसा आदमी है, क्यों छुपाता है उस कमरे की सच्चाई, क्या राज है उसके पीछे। नजरों की टक्कर, चेहरों पर खामोशी की तलवार और कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। सीन यहीं स्लो मोशन सा ठहर गया, जहाँ विश्वनाथ उसकी खूबसूरती और टूटन में खोया हुआ और श्यामली उसे शक, डर और नफरत से देखती हुई समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना ठंडा, इतना रहस्यमयी और इतना खतरनाक क्यों लगता है।